जरूर डालें। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए तनवीर सुल्तान 416-566-3830, 416-566-3830।
अच्छा मज भाई, आज जो है ना बिल एक आया है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आई है, ठीक है जी। इस बिल को जो है पेश किया है हमारे जो गवर्नमेंट है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, उसने, उसकी वजह यह है कि बहुत सारी, आपको पता ही है कि ये चीजें सामने आ रही थी कि बहुत सारा डाटा जो है वो चोरी हो रहा था, फायरवॉल तोड़ दी जाती थी। ये खास तौर पे बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर ये लागू किया जाएगा। और ये इसलिए जो है जरा थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट को हेडेक दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। अब इसके टू साइड्स हैं, क्योंकि कनाडा जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है मोबाइल नेटवर्क्स लाना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि हमको चाइनीज वेंडर जो हवावी है, हवावी टेक्नोलॉजीज, उससे हमको पीछे हटना पड़ेगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वो कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, उससे हम पीछे हटेंगे और ये करेंगे। अच्छा, ये अब अगर आप नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि हवावी टेक्नोलॉजीज की बहुत जबरदस्त, वाकई नेक्स्ट जनरेशन इनकी टेक्नोलॉजीज हैं, तो आप फिर इनको कैसे करेंगे? लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, ये एस्पायनाज के बहुत सारे किस्से आ जाते हैं और इस तरह की चीजें आती हैं, तो इसलिए हमको इनको साइडलाइन करना पड़ेगा।
और ये अब जब लॉ आ रहा है कि सारी कंपनीज
जी,
जैसे कि जरूरी नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन या बड़ी बड़ी कंपनीज हो, चाहे छोटी से छोटी कंपनी भी हो, जिसको रैंसम के लिए बाज दफा
फोन आ जाते हैं,
तो उनको भी एवरीबडी हैज टू रिपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, जो इदारा है उस इदारे को इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा।
और वो कहते हैं जी कि जिन्होंने फिर नहीं किए, या फिर जिन्होंने कहा कि लास्ट मिनट पे, फिर ये जो है फाइन्स भी उनको हो सकते हैं, और फिर जो है कुछ के खिलाफ जो के जरा बड़े पैमाने की ऐसी होंगी चीजें, उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। तो अब ये जल्दी जो है ये अनाउंस,
और ये हमारे अपने के लिए बेनिफिट,
अपने लिए बेटर है। हाँ जी हाँ जी, हमारी हर कंपनी की अपनी सिक्योरिटी के लिए,
सिक्योरिटी के लिए
अच्छा। आज हमारे दो मिनिस्टर्स जो है जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उमर अल गबरा साहब और इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है डोमिनिक लेब्लॉ, उन्होंने आज जी अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वैक्सीनेशन की, जो भी जिसका थोड़ा सा जिक्र माजिद भाई ने भी किया है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा और ज्यादा बता देती हूं कि ये वैक्सीन जो है मैंडेट आज इन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी ये जो लोग, क्योंकि वही बात है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी, बड़ा लंबा वेट टाइम था।
सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अभी जब वैंकूवर गया ना लास्ट वीक
जी,
तो हमने जानबूझ के, हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइट है, टोरंटो टू वैंकूवर इज अ डोमेस्टिक फ्लाइट, तो हमने फिर भी ये सोचा कि 3 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि फॉर लास्ट 3 मंथ्स हमने हॉरर स्टोरीज सुनी है, इज अ केओस एट द एयरपोर्ट्स। और जब वहां 3 घंटे पहले पहुंचे हम, तो हमने जाके देखा कि वहां पर ओवर 300 पीपल इन द लाइन ऑलरेडी, क्योंकि सारी जब आप कस्टम्स एंड उसमें से जाते हैं ना, तो वो वहां पर वो चेक कर रहे हैं आपके वैक्सीनेशन वगैरह, ये वो सारी चीजें, सो इज अ ह्यूज लाइन अप। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि भाई 1.5 घंटा तो वेट किया, उसके बाद हम वहां के अमले के पास चले गए, उसे जाके कहा कि भाई ये जो है ये तो हमारी फ्लाइट तो चली जाएगी, तो आप मेहरबानी करें कि हमें कोई ऐसा शॉर्टकट बताएं ताकि हम, तो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन एट दैट टाइम, तो उसने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहां पहुंचे, और यहां से फिर मैंने आपको स्पेशली, उसने हमारा आगे काम कर दिया, वरना हमारी फ्लाइट भी कैंसिल डिले हो जाती है, फ्लाइट निकल जाती है, हम नहीं रह जाते।
एग्जैक्ट, तो ये आज सस्पेंड कर दी है उन्होंने, जो मैंडेट था ना ये आज उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सस्पेंड इसको कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो बाहर से लोग आएंगे वो जो है। अच्छा मज भाई, आपको पता है जब मैं भी दिसंबर में दुबई जा रही थी, तो आपको पता है कि मैं जा रही थी 23 की नाइट को, तो फिर मेरे ट्रेवल एजेंट ने कहा कि नहीं 23rd की नाइट जो है जब आप जाएंगे जो 9-10 बजे का टाइम होता है वो उसमें बहुत सारी जो है वहां पे केओस होता है वहां पे पियर्सन के ऊपर बेतहाशा फ्लाइटें आ रही हैं और जा रही हैं, तो आपको पता है फिर मुझे फ्लाइट चेंज करनी पड़ी थी फिर नेक्स्ट डे मुझे सुबह की, हालांकि बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उस वक्त 4 घंटे एक तो पहले बुलाते थे और 1 बजे हमको उधर एयरपोर्ट पे पहुंचना था अगर सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी, तो बहरहाल एनीवेज ये जो है सर। अच्छा जी, तो ये अब जो है इन्होंने किया। अच्छा, जो ये है डोमिनिक लेब्लां है उनका कहना है कि नहीं, हमने इसलिए नहीं किया कि लॉन्ग क्यूज हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर या डिले हो रही हैं लोगों की फ्लाइट्स या कि कैंसिल हो रही हैं, हमने साइंस की स्टडी पढ़ी है, यानी कि हमने साइंस टेबल देखा है, साइंस टेबल को देखते हुए हमें लग रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, चीजें जो है वो बहुत ठीक हो गई हैं और ये जो केसेस हैं ये बहुत घट गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जाहिर है, लेकिन उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें ट्रैवल एजेंसी जो है ट्रैवल इंडस्ट्री जो है उसने बड़ा जोर दिया है कि जी ये आप हिसन करें चीजें तो आप ये निकालें इसको, सस्पेंड करें वैक्सीनेशन मैंडेट को। वो कहते हैं हम इसलिए नहीं कर रहे, हम साइंस को लेकर, उन्होंने आज वार्निंग भी दी है साथ ही, उन्होंने कहा अगर हमने देखा केसेस ऊपर जा रहे हैं तो हम फिर से ये मैंडेट्स जो है वापस ला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया है फिर भी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रेगुलेशंस जो है कनाडा में आने वाले जो हैं बाहर से उनके लिए वो सेम रहेंगे। हाँ। वो सेम जो है,
मगर एक और इनको चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी इन लोगों को कि यहाँ पर जो है इनको स्टाफिंग बढ़ानी पड़ेगी।
बिल्कुल,
बहुत सारी बेस जो है वो
खाली पड़ी होती है। हाँ जी,
इंस्टेड ऑफ वन लेन they could have 2 or 3 lanes because this is an international airport.
Yes.
आज जॉन टोरी साहब ने भी कहा कि यह दिस इज एम्बेरसमेंट कि आप इतनी लंबी लंबी लाइनें और लोगों को क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि टोरंटो एयरपोर्ट क्या चीज है।
और आप सोचें कि यहाँ पे हमें जाने में 4 घंटे लगे जी यहाँ से। कैन यू इमेजिन, आई एम एब्सोल्युटली नॉट एग्जेजरेटिंग, आप मेरे बेटे को अलहदा सेपरेटली आप पूछ लेना, एग्जैक्टली 10 मिनट्स ऑन दुबई एयरपोर्ट इन एंड आउट एग्जैक्टली। हालांकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है वो, आपको पता है अब इतना वो बड़ा हो गया है कि जिस जहां पे वो आपका प्लेन रुकता है ना वहां से आपको ट्रेन लेके मेन आपको उस पे टर्मिनल पे पहुंचना पड़ता है। इट्स सच अ ह्यूज एयरपोर्ट। प्लेन से हम उतरे हैं, साथ ही जी उन्होंने ट्रेन स्टेशन बनाया हुआ है, ट्रेन स्टेशन में हम पहुंचे हैं, फिर ह्यूज वॉक करके इमिग्रेशन के ऊपर पहुंचे हैं, कस्टम्स के ऊपर पहुंचे हैं, 10 मिनट्स ओनली इन एंड आउट। इतने लोग वहां पे बैठे हुए थे और इतने बिकॉज दे नो इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
एग्जैक्ट
राइट, और मिलियंस ऑफ लोग
दे गॉट टू डू, दे गॉट टू हायर मोर स्टाफ।
तो इस तरह से तो बहुत एफिशिएंटली। बहरहाल जी, ये जनाब आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अच्छा जी, आज मिसिसागा का एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट एलुइसिस गोंजागा सेकेंडरी स्कूल। यहां पे एक पुलिस को इतला आई थी कि जी यहां पे एक बच्चा जो है हॉल के अंदर एक बंदूक लेके फिर रहा है, तो फौरन यहां पे आया गया था, इसको शट डाउन किया गया था। इसके पास का जो स्कूल है जॉन फ्रेजर सेकेंडरी स्कूल उसको भी जो है होल्ड पे कर दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला जी कि वो जो गन है वो नकली है, वो कोई असली गन नहीं है। अब ये नहीं, पुलिस की अभी तक इतला आई है कि जी ये जो है वो किसी को उन्होंने अरेस्ट किया है या नहीं किया, वो अरेस्ट करने का कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इंजरीज कोई भी इसके अंदर नहीं हुई है और ये जो स्टूडेंट था इनको किसको पकड़ा कौन था वो उसका कुछ पता नहीं है, डिटेल्स नहीं है, और अब ये स्कूल जो है जिनको के होल्ड पे रखा गया था इनको खोल दिया अब लेकर। अच्छा जनाब, आज जो कनेडियन वैक्स इंजरी सपोर्ट प्रोग्राम है वो कहते हैं कि हमको ये जो प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया था दिसंबर 2020 में और फिर इसको जो है इन्होंने किया था लॉन्च कर दिया था जून 2021 में, उसके अंडर इन्होंने कह रहे हैं जी कि हमारे पास 8 जो हैं वो क्लेम्स अभी तक जो हैं अप्रूव किए गए हैं, हालांकि इनके पास 10,000 केसेस आए थे अप्रूवल के लिए। यहां पे जो हेल्थ कनाडा ने इनको ये जो था ये अप्रूव किया था ये प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा जो है वो कह रही है कि अभी तक ये जो सारे केसेस हैं उनमें से 774 उन तक पहुंचे हैं, 654 जो हैं उनको एडमिसिबल एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए भेजा है, 71 को इनएडमिसिबल कहा है, 49 जो हैं उनका पेंडिंग है रिव्यू, और इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो रिव्यू में चीजें चली जाती हैं ना इन्हीं के अंदर फिर वो पेंडिंग वगैरह कुछ सिस्टम चलता रहता है, लेकिन आज जिस चीज ने आंखें खोली वो ये थी कि 10,000 क्लेम्स आए और उसमें से 8 का अप्रूवल गया।
सही।
तो आई मीन किस पेस पे भाई आप काम कर रहे हो, किस पेस पे आप काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस बैठ के तंबाकू रोड
गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की जॉब्स। यानी हम अपने मुल्कों को इतना बातें बताते हैं, आपका तो उनसे भी बुरा हाल है ना। तो ये ऐसे। अच्छा जी, एक और आज जो खबर आई है विच कैन बी वेरी गुड, आपको पता ही है हम आपको बहुत अरसे से हर दूसरे तीसरे महीने बताते ही हैं ओपियोइड का जो क्राइसिस आ जाता है, तो उसमें जो है बच्चे कभी स्कूल में भी होते हैं, ओवरडोज आ जाती है और उनको बचाया नहीं जा सकता है, इधर उधर सड़कों पर होते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं बचाया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट अगर वो स्कूल के अंदर हैं तो उनको बचाया जा सकता है। ये अब एडवांस कोरोनरी ट्रीटमेंट फाउंडेशन जो है इसने सजेस्ट किया था कि भाई बच्चों को जो ओपियोइड अगर उनको ऐसे ओवरडोज हो जाए तो उसकी जान कैसे बचाएंगे, तो अब थाउजेंड्स ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं कनाडा के अंदर उनको अब बताया जाएगा कि आपने ये नेलोक्सोन जो है ये कैसे एडमिनिस्टर करना है और ये जो ओवरडोज है इसके इफेक्ट्स को आपने रिवर्स कैसे करना है, और सीपीआर भी अब प्रॉपरली और ज्यादा बच्चों को बताया जाएगा, और ये जो चीजें हैं ये सारी फॉर फ्री ऑफर की जाएंगी स्कूलों के अंदर। फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्यूबेक, अल्बर्टा, ऑन्टेरियो और बीसी में, और फिर उसके बाद जो है दूसरे सूबों में भी ये फैलाया जाएगा।
फॉर सम रीजन आई डोंट एग्री विद दिस, कि जैसे कि एक जमाना था कि जब इन्होंने फ्री नीडल्स दे दी थी कि लोग यूज नीडल्स यूज करते हैं तो लीजिए फ्री नीडल्स दे रहे हैं, तो यू आर इनकरेजिंग पीपल मोर टू यूज दिस व्हेन यू गेट फ्री, समबडी वांट्स टू ट्राई इट, तो ये भी जो है ना ये आप उनको एजुकेट करें कि ये दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू।
नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम कर भी रहे हो ना तो तुम्हें हम बचा लेंगे, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं,
तो लोग कहेंगे
हम स्कूल में बचा लेंगे, कोई बात नहीं, तो अब तो ट्रेनिंग दे दी है बच्चों को तो अब मुझे बचा लो।
आई थिंक दे शुड गिव देम मोर एजुकेशन हाउ
ना करो
ये हार्मफुल है ये।
बिल्कुल ऐसे, यानी कि अगर तुम स्कूल में भी थे फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की छुट्टी हो गई और तुम बाहर निकल गए, फिर तुम्हें कौन बचाएगा?
Exactly.
है ना, तो ऐसे। अच्छा जी, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा जो है आज उसने बहुत बुरा मनाया, उसकी वजह यह है कि उनके दो जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे उनको अरेस्ट किया गया था, और ये जो प्रेसिडेंट हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के तजिंदर सिंह सिद्धू जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको ये जो कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इनको इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने गलत रॉन्गफुल इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी और अरेस्ट किया। अच्छा, ये क्या हो रहा था कि ये एक निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, और बड़ा ही ये मतलब पीसफुल था, पीसफुल था ये। वो कह रहे हैं कि ये रिमेम्बरेंस रैली निकाल रहे थे हम विक्टिम्स ऑफ 1984 मैसेकर ऑफ सिक्स इन इंडिया में, तो उसके लिए जो है ये इसमें किसी ने बता दिया कि जी बॉम्ब का स्केयर है इसके अंदर, तो उसमें पता नहीं किसने पॉइंट आउट किया, तो दो जो इनके मेंबर्स थे उनको पकड़ के ले गए क्योंकि ये कर रहे थे उसके पास जो है नियर पार्लियामेंट हिल कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ओहो, तो चाहे दो लोगों को जिनको पिन पॉइंट किया गया उनको पकड़ के ले गए, तो वो बाद में पता चला कि वो बिल्कुल गलत उनको पकड़ा था, उनके पास कोई ना बॉम्ब्स थे ना कोई चीज थी, तो अब वो बड़े भड़के हुए हैं वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो कह रहे हैं कि ये किसने पॉइंट आउट किया, किसने इनके बारे में ऐसी गलत बात की, वो आप जो है फाइंड आउट करें।
Exactly.
तो ये अब जी देखेंगे कि क्या यहां पे होता है। आज जनाब एक ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का एक रिव्यू चल रहा था एक वाक्य के ऊपर, उनकी आज एक रिपोर्ट आई है दो कनेडियन एयरलाइंस के बारे में कि उनका कोलिजन होने वाला था और होते होते बच गया, अल्लाह ने उनको बचा
लिया। लकी,
हाँ, वेरी लकी। अच्छा, उसमें वो बता रहे हैं कि एक जी बोइंग जो था 777 था, और ये जो था इसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भाई तुम लाइन अप करो, ये हैलिफैक्स जा रहा था, इसके अंदर 345 पैसेंजर्स थे, 14 क्रू मेंबर्स था, और जबकि दूसरा जो एयर कनाडा का एम्ब्रॉयडर 190 था वो रनवे 06L पे खड़ा हुआ था उड़ने के लिए, तो अभी वो उड़ा नहीं था, उसने अभी अपनी रेस पकड़ी थी और इसको कहा जी कि तुम आके लाइन अप कर लो, तो इनका आपस में कोलिजन हो सकता था, लेकिन फिर वो उसको बचा लिया गया, लेकिन वो जो है वो जो टावर था, वो जो एयर ट्रैफिक टावर होता है, उनको ये पता नहीं चला और उन्होंने ये गलत मैसेज दिया, तो ये अब इन्होंने जो रिव्यू बिठाया था उसमें इन्होंने कहा जी कि अब देखना पड़ेगा कि कौन इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल थे। बहरहाल उस वक्त वो जो कैप्टन्स थे, जो पायलट्स बैठे हुए थे, उन्होंने भी देख लिया और फिर कुछ लोगों को वहां पे भी होश आ गई, तो वो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं आप रुक जाएं आज लास्ट मिनट पे, वरना ऐसे बिल्कुल सामने मुंह के ऊपर आके हेड ऑन कोलिजन होता, और ये देखें आप कितने बंदे उसके अंदर मर जाते हैं। उसके अंदर जो कैनेडियन एम्ब्रॉयडर था उसके अंदर 190 लोग थे और इसके अंदर जो थे 345 पैसेंजर्स थे, तो ऐसे हो सकता था। आज मॉस्को ने जी ब्लैकलिस्ट किया है बहुत सारे यूके के ऑफिशियल्स को, इसके अंदर मीडिया के बहुत सारे बंदे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के बंदे हैं, तो कुछ लोग जिनको के इन्होंने किया है उनकी हम आपको भी तस्वीरें भी दिखाएंगे, और रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि ये सारे जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरीज जो हैं ये पेंट कर रहे थे और बता रहे थे, और इसके अंदर उन्होंने जो है वो सिर्फ ये कह रहे थे कि रशिया जुल्म कर रहा है, रशिया अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ की स्टोरियां जो हैं वो ये नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। तो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं इसमें बहुत सारे, और फिर इसके अंदर जो है ये शॉन वॉकर ऑफ द कैनेडियन ऑफ द गार्डियन, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये हैं गिडियन रैचमैन हैं द फाइनेंशियल टाइम्स के, और मार्क गैलियोटी, यानी कि बहुत सारे टॉप जर्नलिस्ट जो हैं उन सबको भी आज इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है।
इससे पहले सीबीसी के भी
सीबीसी के भी कर सक चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इन्होंने कहा जी कि ये सारे गलत जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है जी, उसने आज एक स्टेटमेंट जारी की और उसके मुताबिक उनको कहा गया कि जैसे ये सारे मीडिया वाले हमारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं तो इट्स नॉट ऑल ट्रू, हमारे साइड की भी आपको स्टोरी सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि यूक्रेनियन फाइटर्स जो हैं इनको हमने कहा वो जो एजोट केमिकल प्लांट जो है उसमें हमने उनके लिए जो है वो विच इज इन द टाउन ऑफ सेवरेडोस्क, उनको हमने कहा है कि आप अगर सरेंडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और आपको जो है वो कहते हैं जी हमने ये एक तो ये इनके साथ किया कि अगर ये क्वाइटली सरेंडर कर दें तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे। और दूसरा ये है वो कह रहे हैं जी कि हमने ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो भी हम अब कल से खोल रहे हैं जिसके के अंदर अगर कोई लोग छोड़ के यूक्रेन जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, सिविलियंस स्पेशली जो है वो अगर जाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि ये साइड की स्टोरीज जो है हमारी ये भी मीडिया वालों को दिखाना चाहिए। आज यूके के अंदर काफी गर्मा गर्म दिन रहा क्योंकि एक नया वो लॉ लेकर आए हैं और ये उन्होंने डील की थी रवांडा की गवर्नमेंट के साथ, उसके अंडर कुछ लोगों को जो असाइलम सीकर्स थे जो कि आए थे इंग्लैंड के अंदर उनको ये वापस रेफ्यूजीज उनको ये लोग वापस भेज रहे हैं। वो कहते हैं जी कि एक प्लेन चार्टर कराया गया है और इन सबको यूके से रवांडा लेके जाया लेके जाएंगे क्योंकि इनकी जो रवांडा की गवर्नमेंट के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्शियल डील हुई थी 120 मिलियन पाउंड्स की। वो कहते हैं जी हम आपके बंदे दे रहे हैं और पैसे भी आपको दे रहे हैं, इनको अपने पास रखो क्योंकि वो कहते हैं हम रोकना चाहते हैं। यूके होम ऑफिस जो है उसने कहा कि ये जो हमने डील अप्रैल के अंदर साइन की थी इसका मेन मकसद ये है कि ये जो बहुत डेंजरस ट्रैवल करते हैं और अननेसेसरी जर्नीज करते हैं स्मॉल बोट्स में जिसमें कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और लाइव सेव नहीं की जा सकती तो उसको हम रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें जो अब अनवर सुलेमान है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रिफ्यूजी काउंसिल, वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा ये गवर्नमेंट के क्रूअल और नेस्टी डिसीजन से बहुत ही मैं उदास हूं और मुझे लगता है कि ये इनका डिसीजन जो है ठीक नहीं है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी चीफ जो है फिलिपा ग्रैंडी, उन्होंने भी कहा है कि ये यूके जो है बजाय इसके कि वो बेचारे असाइलम सीकर इनके पास अपनी हिफाजत के लिए आए थे ये रिस्पांसिबिलिटी लेते, ये रिस्पांसिबिलिटी फिर से रवांडा के अंदर जा दे रहे हैं तो कोई इसमें वो नहीं है कि अगर ये वहां पे लोग पहुंचे तो इनको मार दिया जाए वहां पे, तो ये अपनी शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह
हमारे जो प्रिंस चार्ल्स हैं
उन्होंने बड़ा बुरा मनाया
अब उनको चुप करा दिया गया मगर ये
वो कहते हैं ही फेल्ट बैड अबाउट इट प्राइवेटली हाँ उसको पब्लिक नहीं वो करना चाहते। अच्छा जस्टिन वेल्बी जो है आर्च बिशप ऑफ कंटरबरी जो है उन्होंने कहा है कि ये चीज जो आपका ये जो डिसीजन है इसमें तो बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं कि भाई ह्यूमन लाइव्स मैटर नहीं करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर करती हैं तो उनको इधर हिफाजत दो तुम उधर भेज रहे हो मरने के लिए उनको, यानी कि उनका ये मतलब था। लेकिन रवांडन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है विंसेंट बिरूटा उन्होंने कहा है जी कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और आपकी ये जो सारी बातें हैं कि हम रिफ्यूजीज को मार देंगे कुछ हो जाएगा हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एंड एवरीथिंग सो वी विल केटर फॉर देम। अब कितना केटर करेंगे वो तो अब आने वाले जो हैं वो दिन ही बता सकते हैं। मॉडर्ना जो है जी उसके बारे में अब बहुत सारी जो हैं वो चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये जो है एक डेटा जो है आज प्रेजेंट किया है वैक्सीन सेफ्टी डेटा लाइन सिस्टम्स ने और उसने कहा है कि वैक्सीन जो मॉडर्ना की है वो हार्ट इन्फ्लेमेशन जो है बहुत ज्यादा कर रही है कंपेयर टू फाइजर बायोनटेक का जो शॉट्स हैं। वो कहते हैं जी कि हमने फाइंड आउट किया है कि ये जो इंसिडेंस है दिस इज 97.3 केसेस पर मिलियन इन मेल्स एज बिटवीन 18 to 39 और ये बढ़ जाती हैं सेकेंड डोज के बाद जबकि जो फाइजर बायोनटेक की जो डोजेस हैं दैट इज ओनली 81.7 केसेस पर मिलियन। तो अब ये इसके ऊपर जो है फिर से मॉडर्ना के ऊपर किनसीर ना किए तभी मजिद भाई मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे तो मॉडर्ना लगी थी मेरा कोई जिस्म सही फंक्शन नहीं कर रहा।
आपको मॉडर्ना लगी
दोनों मुझे शॉट्स थी बल्कि तीनों मुझे मॉडर्ना लगी हैं।
ओ इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप डिफरेंट से
हाँ डिफरेंट लग रही है ना तो ये सही मेरे हालात कुछ सही नहीं है इसीलिए मैं बेकी बेकी बातें कर रही हूँ आजकल इसीलिए मैं गाने गाती हूँ ना यहाँ पे अपने कमरे में बैठ के जरा सा झूम लूँ तो माजिद भाई मुझे कहते हैं अरे ना ये मॉडर्ना कैंसर है मुझे पता चले है जी।
हाँ मैं सोच रहा था क्या वजह है,
पता चला,
पता लगा।
आप मुझे कहते रहते हैं कमरे से अरे ना अरे ना अरे ना। तो जनाब ये हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, जितने दी खोती उतने आंख खोती, आपने सुना है। अब आमिर को तो समझ नहीं आएगा लेकिन आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, सारी जिंदगी हमने MBS को जो है बातें सुनाई, KSA को जो है बड़ा वो सुनाई बातें, ये खराब है, इनके मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, बड़ी खराब किंगडम है और इनके खिलाफ हम मोर्चे निकालेंगे और सख्तियां करेंगे। बाइडेन साहब जब अपने इलेक्शन ट्रेल पे थे, हैं जी, मैं इनको सीधा कर दूंगा और ये बड़े खराब लोग हैं और ये हूं। बाइडेन साहब, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मिडल ईस्ट के टूर पे जा रहे हैं।
हाँ जी,
मिडल ईस्ट के टूर पे जा रहे हैं और वहां पे मिलेंगे ये लोग इजरायली लीडरशिप के साथ, जाहिर है। लेकिन उसी ट्रिप में, सेम ट्रिप में सऊदी अरब भी जाएंगे।
ओके,
ठीक है जी। सऊदी अरेबिया सिर्फ नहीं जाएंगे बल्कि जो बड़ा इसके अंदर जो बॉम्ब फड़ा है आज व्हाइट हाउस ने, वो बॉम्ब ये फड़ा है, ये जो इनका जो टूर है ये कल से शुरू हुआ है, तो ये 13th से लेकर 16th तक, तो इसके अंदर ये है कि ये MBS से भी मिलेंगे बाइडेन साहब। अच्छा जी, बाइडन साहब जो हैं जिस वक्त इलेक्शन ट्रेल पे थे, तो आपको इनके अपने खुद के वर्ड्स अगर याद हुए, जिस वक्त जमाल खशोगजी को मारा गया था, आपको पता ही अंकरा में वहां पे ये गए थे अपने वो, नहीं सॉरी, इस्तांबुल में, इस्तांबुल में जो इनकी वो जो सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है उसमें गए थे अपना वो वीजा लेने के लिए, तो फिर उधर उनको अलेजली वहां पे मार दिया गया था। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा जी हमने नहीं मारा, कोई रोग एजेंट्स थे उन्होंने मारा जब वो बाहर जा रहा था। बहरहाल खैर उन्होंने कहा जी कि नहीं ठीक है हमारे कंपाउंड में भी मारा है, बहरहाल वी वर नॉट। और इन्होंने अमेरिका ने कंप्लेन की, अलेज किया था कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है उसके ऑर्डर्स पे इसको मारा गया, उसने ऑर्डर्स दिए थे। ये जो इनकी इंटेलिजेंस थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस, वो ये कह रही थी, जबकि मोहम्मद बिन सलमान बार बार कह रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आदमी उस वक्त जो है वो इस्तांबुल की उसमें एम्बेसी के अंदर था, सऊदी एम्बेसी में। तो बाइडन साहब खुद कहते रहे हैं कि इनके साथ बड़ी सख्ती के साथ जो है वो मामले निपटाने की हम जरूरत है और हम पेश आएंगे। अब ना सिर्फ ये कि वो सऊदीया जा रहे हैं बल्कि MBS से भी मिलेंगे।
वेरी गुड,
व्हाट इज दिस मजद भाई,
दोस्ती का हाथ बढ़ाना है।
अच्छा अच्छा, प्यार दिखा रहे हैं,
प्यार दिखा
रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्यार भी और PR भी बढ़ा रहे हैं।
मतलब कहने का मकसद यही है,
ऑयल चाहिए ना, ऑयल चाहिए इनको, अरब ऑयल। तो इसलिए ये मते जो हैं जी, अब ये कितने दिन ये हनीमून का पीरियड रहेगा, ये तो आपको खुद ही पता है कि अंकल सैम की मते कैसी होती हैं, जैसे कभी पाकिस्तान के साथ भी बड़ी थी।
हाँ, हम 1.5 मिनट का कमर्शियल स्पॉट लेते हैं, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
विलेज टेस्ट ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ, एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को, कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर। और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी। पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663, 6477744888। विलेज टेस्ट।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकव जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असेट इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
Again, and sab June 26th ko aap mark kar lein, June 26th ko janab Khabar Haar, jo Pakistan ka mashhoor program hai, TV program, آفتاب اقبال صاحب اس کے روح رواں اور 16 لوگوں کی ایک ٹیم پاکستان سے یہاں آ رہی ہے، ایک بڑا رنگا رنگ پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گے جون 26 کو 5 بجے شام کو، ڈنر کے ساتھ یہ پروگرام ہے کینیڈین کنونشن سینٹر ان برامٹن۔ ٹکٹس اینڈ فردر انفارمیشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 416-526-6800 ان کا فون نمبر ہے۔ جی
اچھا، یہ بڑی پیاری خبر ہے ماجد بھائی، یہ اتنی کیوٹ خبر تھی تو میں نے کہا اس کو ضرور بھائی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ آج کچھ آگے جا کے دل دکھانے والی خبریں ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی آج یہ نیوز ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک یہ نا امریکہ کے اندر برانکس زو ہے، اس کے اندر ایک ہاتھی ہے، تو جو کچھ اینیمل لورز ہیں، مطلب بندیاں تے پیار آ ہی نہیں رہا نا کسی نو، ہاتھی تے پیار آ گیا ہے، تو اس کو کہا جی اس کو چھوڑ دو۔ اب زو والوں نے کہا کیسے چھوڑ دیں بھائی، یہ تو زو میں
پاکستان والوں نے چھوڑ دیا تھا،
نہ چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بڑے جالم ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑتے، یہ زو ہے، اس کے اندر یہ ہاتھی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے وہاں پہ جو کورٹ آف اپیلز ہے نیو یارک میں، وہاں پہ انہوں نے جج کو کہا کہ تم ہیبیس کارپس پروسیڈنگ شروع کرو اس کے اوپر۔ اچھا، ہیبیس کارپس جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اس سلسلے میں ہوتی ہیں جس وقت کوئی انسان یہ کہتا ہے، ہیومن پرسن کہتا ہے کہ جی مجھے سولٹری کنفائنمنٹ دی گئی ہے، یا مجھے زور زبردستی میں کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جس وقت کیس ادھر جج کے پاس گیا، چیف جج جینٹ ڈیفیور ہے، انہوں نے یہ کیس ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا نمبر ون اکارڈنگ ٹو دا لا یہ ہیومن نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بڑے فرینڈلی ہیں، بڑے خوبصورت اینیملز ہیں، وی آل لو دیم، لیکن یہ ہیومن نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہیبیس کارپس جو ہوتا ہے انسان یوز کر سکتا ہے اپنے لیے، انسانوں کے لیے یہ لا ہے کہ اس کو اگر زبردستی سے آپ نے کنفائنمنٹ میں لکھا ہے، اس کی لبرٹیز کے اوپر آپ نے روک لگائی ہے، تو یہ اس کو کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہیپی، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے ہیپی جی، ایلیفنٹ کا نام، تو یہ جو ہیپی ہے مجھے لگتا ہے سکھ ہے یہ، ہیپی، تو یہ کہتا ہے جی کہ یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے نان ہیومن کو جیسے کہ ایک اینیمل، اس لیے جو ہے اس کو زو میں ہی رکھا جائے گا۔ اور برانکس زو والے جو تھے انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم نے اس کو کوئی اللیگلی ادھر امپریزن نہیں کیا ہوا، یہ یہاں پہ جو ہے اس کے اندر زو کے اندر فریلی گھوم پھر سکتا ہے، اس کے لیے کافی ہم نے ایریا رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انڈیا کے اندر جی امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے آج کہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس کو امیڈیٹلی آپ روکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیڈلی شان میں جو گستاخی کچھ دو بی جے پی کے آفیشلز نے کی تھی، اس کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، ان ڈیمونسٹریشنز کے اندر جو دو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور سینکڑوں ہی لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے۔ امنیسٹی انٹرنیشنل کے جو ہیڈ ہیں آکر پاٹیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتھارٹیز ہیں ویشسلی کریک ڈاؤن کر رہی ہیں مسلمانوں کو، اور یہ لاز ان کے لیے سلیکٹیولی چلا رہی ہیں، اور یہ آربیٹری جو ڈیٹینشن ہے اور پیونیٹیو ہاؤس ڈیمولیشنز ہیں، یہ بالکل انڈیا کی کمٹمنٹ انڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا جو ہے اس کے اگینسٹ ہے۔ یو پی کے اندر تقریباً 300 لوگ جو ہیں لاسٹ ویک ان کو ان ریلیز کے اندر سے جو ہے اریسٹ کیا گیا تھا، تو امنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ امیڈیٹلی ان کی ڈیٹینشن ختم کر کے ان کو ریلیز کیا جائے، اور یہ جو اریسٹ ہیں ان کو بھی روکا جائے، اور یہ جو بلڈوز کیے جا رہے ہیں ان کے گھر، ان کو بھی ایک سیکنڈ میں روکا جائے۔ تو اب دیکھیں گے جی کیا وہاں پہ ہوئے گا۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند جو ہے اس نے بھی دو فریش پلیز جو ہیں سپریم کورٹ میں ڈالی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی جو ڈیمولیشنز کرتے جا رہے ہیں یو پی کی گورنمنٹ، اس کے اوپر آپ سٹے لیں کیونکہ ان کو روکیں، ये उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये प्रज्ञा राज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर जावेद मोहम्मद का घर उन्होंने डिमोलिश किया, हालांकि वो घर जो है वो उनका उनके नाम पे था भी नहीं, उनकी बीवी के नाम पे था। एज अ रिजल्ट उसके बीवी बच्चे जो है सड़क पे बैठे हैं और भी बहुत सारे इस तरह के लोग मुसलमान जो है फैमिलीज वो सड़कों पर बैठी हैं। तो इन्होंने कहा है कि फौरन ये जो बुलडोज कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है घरों को, इसको रोका जाए। तो कोर्ट को कहा है कि जी आपकी फौरन इसके ऊपर अटेंशन चाहिए, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करना बंद करना चाहिए। एक क्लिप आया है 15 सेकंड का और आप देखें ये कितने खतरनाक है सोशल मीडिया के ऊपर। इसको कहा जा रहा है जिहादीज ऑफ कानपुर, जिसमें के देखा जा रहा है कि दो ग्रुप्स हैं और वो डंडे सोटे लेके और बंदूकें लेके खड़े हुए हैं और ये बहुत ज्यादा ट्विटर के ऊपर वायरल हुआ हुआ है और उनको कहा जा रहा है ये जहादी हैं ये कानपुर के। और ये लोग जो भी रिसेंटली जो कानपुर के अंदर ये जो सारे जलसे जुलूस निकले थे ये इसके अंदर वायलेंस फैला रहे हैं। अच्छा जी, वायलेंस फैला रहे हैं और ये इन्होंने कहा जी ये जून 10 को एक लड़के ने ट्विटर यूजर ने ये कहा और उन्होंने कहा कि ये देखो मुसलमान कैसे डिस्क्रिमिनेट जो है फायरिंग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर पुलिस जो है वो सिर्फ उसने टीयर गैस छोड़ी और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब जब मीडिया ने फैक्ट चेक किए, एक दो जो अब आजाद मीडिया हिंदुस्तान में रह गया उसने जब किए, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक साल पुरानी वीडियो है और ये वहां पे धौदरा थाना पुलिस स्टेशन के इलाके में बरेली के अंदर हुई थी ये, और इसमें दो मुसलमान ही शामिल थे, एक का नाम था जलीश अहमद और दूसरे का नाम था सलीम कुरैशी। हुआ क्या कि जलीश अहमद ने सलीम कुरैशी को कहा कि तुम उसको एक दुकान चाहिए थी अपनी मीट शॉप चलाने के लिए, बुचरी अपने चलाने के लिए, तो जलीश ने इसको सलीम को कहा कि तुम यहां पे ये मीट बेचो, मैं तुम्हें ये अपनी शॉप देता हूं लेकिन तुमने बहुत फेयरली इसको चलाना है, प्राइसेस ज्यादा नहीं करनी। सलीम ने क्या किया कि लालच में आके 150 रुपीज इंडियन पर किलो बेचता था गोश्त, उसको 250 रुपीज पर किलो कर दिया, जिसके के ऊपर जलीश जो है वो भड़क गया। उसने कहा नहीं, तुमने मेरे से वादा किया था कि यू विल बी फेयर टू पीपल, तो तुम मेरी दुकान जो है वो खाली करो। जब उसने खाली नहीं की तो उसके साथ हाथापाई हुई, वो मारपीट जब हुई तो फिर वो जो सलीम की जो फैमिली के लोग थे उन्होंने फिर हवा में गोलियां चलाई। तो किस्सा यह था कि उसको जोड़ दिया गया कानपुर के ऊपर ये जो अब आजकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और जहादी उसको कह दिया गया और कहा गया जी कि ये मुसलमान सारी जो हैं ये राइट्स कर रहे हैं और ये फैला रहे हैं, मुश्किलें फैला रहे हैं यहां पे। तो ये ऐसे एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है जी उसकी आज एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो बेतहाशा खराब हो गई है और उन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि अगर आपने इसके ऊपर काम ना किया तो आने वाली जनरेशंस बहुत ज्यादा सफर करेंगी। और वो कह रहे हैं कि आपको द फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ वेरी एम्बिशियस एयर क्वालिटी प्रोग्राम और ताकि आप इनके जो एयर की क्वालिटी है और ये स्टैंडर्ड्स जो हैं आप मेंटेन कर सकें और इसको फॉलो कर सकें। DGISPR जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तखार, इसकी थोड़ी सी खबर माजिद भाई ने आपको बताई है, मैं थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं। एक असल में वो टीवी का इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें कि माजिद भाई वो बोल रहे थे कि अगर जो मुशर्रफ साहब है वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था बहुत शदीद बीमार हैं और दुबई के अंदर रह रहे हैं और इनको जो है एमीलॉयडीटिस है, ये नर्व्स के ऊपर जो है ये बीमारी और ये जो आपकी जैसे अल्जाइमर हो जाता है ना, आप भूलना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर जो है 78 इयर्स जो है मुशर्रफ साहब की इस वक्त उम्र है और वहां पे दुबई में इलाज करा रहे हैं। तो ये प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी हमने उनकी फैमिली को कॉन्टैक्ट किया और अगर वो आना चाहते हैं पाकिस्तान तो वो आ सकते हैं, यहां पर बिल्कुल वो आ सकते हैं। अच्छा, ये इसका सिनेरियो क्यों है, आज इनसे ये सवाल क्यों किया गया और इन्होंने ये क्यों कहा कि कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था जी कि ये जो मुशर्रफ साहब के वापस आने के ऊपर जो कोई भी हर्डल्स नहीं है और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो जब इन्होंने ये कहा तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा जी कि हाँ हमने भी कांटेक्ट किया उनकी फैमिली को और वो बिल्कुल आ सकते हैं। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी मुराद अली शाह साहब, उन्होंने आज अपना बजट पेश किया। कल हमने आपको बताया था कि पंजाब ने और केपी ने किया था तो आज इन्होंने सिंध ने जो है अपना बजट पेश किया है वर्थ 1.71 ट्रिलियन रुपीज फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 और इसमें उन्होंने कहा जी ये बहुत ही प्रो पुअर और टैक्स लेस जो है ये बजट है। इसके अंदर उन्होंने कहा जी स्पेशल प्रोग्राम्स हम हार्ड हिट एरियाज को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसको हम सपोर्ट देंगे, हेल्थ लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर हम खर्चा करेंगे और जो है टैक्सेस को बिल्कुल एक तो बढ़ाया भी नहीं है और कम करने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉटन के ऊपर फीस थी, प्रोफेशनल टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट ड्यूटीज थी, इनको भी हम खत्म करेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको हम रिलीफ पैकेज देंगे, उसके लिए हमने पैसे रखे हैं 26.85 बिलियन रुपीज और इसमें फूड सिक्योरिटी भी है और इसके अलावा हम वीट के ऊपर सब्सिडीज देंगे एट द ट्यून ऑफ 23.324 बिलियन रुपीज। तो वो कहते हैं जी ये बहुत ही प्रो पुअर हमारा जो है बजट है, तो इसमें किसी को गरीब को जो है वो नहीं तकलीफ होगी। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत का दिन था क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके के ऊपर टेरर फाइनेंसिंग के बहुत सारे केसेस थे वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, वो इसके ऊपर से हटा दिए गए हैं। तो एज अ रिजल्ट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज वन दिस टेरर फाइनेंसिंग केस। प्लेंटिफ थे हैरोल्ड ब्राउन सीनियर, इन्होंने अपनी जो केस है एनबीपी के खिलाफ वो वापस ले ली है। इन्होंने कहा था, एक्यूजेशन लगाए थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ यूएस मिलिट्री बेस ऑफिशियल्स इन अफगानिस्तान, और उसके अंदर क्योंकि 9 यूएस ऑफिशियल्स जो थे सोल्जर्स जो थे वो मर गए थे, लेकिन उसके अंदर कोई पाकिस्तान के किसी बैंक का कोई नहीं था। बहरहाल बना दिया जाता है ना जी, व्हेन यू कांट मेक इट यू फेक इट, ये हमारे जो है अमरीका वाले भाई जो है उनका ये मंत्र है ना। तो बहरहाल जी इनको अगर इनके ऊपर ये लग जाते सैंक्शंस एनबीबी के ऊपर तो पाकिस्तान ऑलरेडी सिंक कर रहा है, बिल्कुल सिंक कर जाता, इसलिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनको जो है इनको वो देना पड़ता, हर जाना देना पड़ता इसके लिए। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो कहां से फिर आते भाई, तो वो बैंक बैठ जाता, बैंक तो बैंकरप्ट ही हो जाता, मुल्क में से भी अगर इतना पैसा निकलता तो वो भी हो जाता। तो ये आज उनके लिए बहुत बड़ी वो है। और इसको टीम को लीड कर रहे थे अहमद इरफान साहब, और ये वही टीम है जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है कुड़की और रेकोडेक पीआईए और तवारकी जो केसेस हैं उसमें। और अगर ये हो जाता एक और भी जिस तरफ हम इशारा कर दें तो एफएटीएफ की जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें भी पाकिस्तान की बहुत बैशिंग होती। लेकिन जैसे कि फियाज भाई ने कल अनाउंसमेंट की थी कि अब पाकिस्तान को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे इमरान खान को साइड पर लगाने का, तो ये था, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड सिक्स जनरेशन वॉरफेयर। ठीक है जी, तो ये पहला उनको इनाम पाकिस्तान को दिया, तो लगता है कि एफएटीएफ में भी कुछ चीजें उनके लिए नरम की जाएंगी। आज जनाब ये एक मेजर स्टोरी है जो हम आपके साथ करने लगे हैं, एंड दिस हैज अपीयर्ड इन टेलीग्राफ न्यूजीलैंड। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे आरिफ नकवी साहब जो कि चलाते थे अबराज कैपिटल फ्रॉम दुबई। हिज वर्थ वॉज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट लाइक द बीसीसीआई बैंक इनके बारे में खबर आई कि ये इनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में, गलत तरीके से पैसा कमाने में और उसके अंदर जो हैं ये शामिल हैं। जो नकवी साहब हैं, मेरी भी उनके साथ दुबई के अंदर जो है एक मुलाकात है छोटी सी, तो बहुत ये आउटस्टैंडिंग ये कंपनी चलाते थे। यानी आप सोचें कि ये इसका लेवल क्या था कि ये बिल गेट्स को और जो है बराक ओबामा को और जॉन कैरी साहब तक को ये इन्होंने कन्विंस किया था कि देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द इमर्जिंग मार्केट्स और उसके अंदर प्राइवेट एक्विटी जो है हमको लगाने की जरूरत है। 2018 में ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी प्राइवेट एक्विटी कंपनी जो थी अबराज कैपिटल जो थी बन गई थी, और दिस वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 20 एक्विटी कंपनीज, वन ऑफ द टॉप 20, और इनका नंबर शायद 18 या 19 था। और इनके जो एसेट्स थे दे वर एट द ट्यून ऑफ 14 बिलियन यूएस डॉलर्स, एंड दे वर ऑल ओवर स्प्रेड इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अफ्रीका, तुर्की, मिडल ईस्ट। और ये जो थे करते थे इन्वेस्टमेंट्स जो इनके अंदर शामिल थी वो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन तक को थी, जिसके के ऊपर फिर बेसिकली सस्पिशन इनका शुरू हुआ था कि आपने यूएस इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया है और इनके ऊपर एक जो है वो प्रोसीडिंग्स बिठाई गई थी। ये वही आदमी है ये जो है आरिफ नकवी साहब जिन्होंने कहा था ये जो कराची इलेक्ट्रिक को कि तुम कराची की इलेक्ट्रिसिटी के ये जो है कारोबार जो है हमें दे दो, हम वी विल एंश्योर के एक दिन भी एक घंटा भी बिजली जो है वो नहीं रुकेगी कराची के अंदर, वी विल मैनेज दिस। तो वो जो केएससी
कोई लोड शेडिंग नहीं,
कोई लोड शेडिंग नहीं, कुछ नहीं कराची इलेक्ट्रिक के अंदर। बहरहाल जी वो डील चली नहीं आगे। तो वो अच्छा, इसके ऊपर टेलीग्राफ न्यूजीलैंड ने आज एक स्टोरी की है, और ये स्टोरी वही है कि जो चौधरियों के गांव में एक बेचारे मजेरे ने सर उठाने की कोशिश की, एग्जैक्टली द सेम केस जैसे बीसीसीआई को दुनिया से खत्म किया गया। दिस ऑल्सो वॉज एग्जैक्टली द सेम क्लासिक केस के एक आदमी जो मुसलमान था पाकिस्तानी था बिकॉज ही डिड नॉट चेंज हिज पासपोर्ट ही वॉज ऑलवेज ही हेल्ड द पाकिस्तानी पासपोर्ट उसको फिर दीवार के साथ कैसे लगाया गया और उसके खिलाफ जो है तो ये जो है ये जो रिपोर्टर है ये टेलीग्राफ न्यूजीलैंड का ये कहता जी कि मैं इसको मिलने के लिए गया इंग्लैंड के अंदर और ये अभी जो है इसने अपियर होना है यूएस के अंदर क्योंकि यूएस कोर्ट में ऑलरेडी इसको 125 ईयर्स की सजा सुनाई गई है. हाँ जी तो वो कहता है जी मैं इससे मिलने के लिए गया क्योंकि ये बेल के की जो इसकी जो वो सारी हैं रिक्वायरमेंट्स उसमें सिर्फ इसको दिन की 2 घंटे की बेल मिलती है और इसको जो है बेल नहीं मिलती है. तो वो कहता है जी मैं इसके पास गया और मैंने कहा जी इसको कहा गया कि ऑडिटर्स जो हैं इनके बारे में कहा गया था कि ऑडिटर्स जो तुम्हारे हैं 400 मिलियन का शॉर्टफॉल जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं एक कंपनी से निकाल रहे हैं दूसरे में डाल रहे हैं दूसरे में डाल रहे हैं तीसरे में डाल रहे हैं. वो कहते हैं जी कि एक ऐसा आदमी जिन्होंने इन बड़े लोगों को जैसे कि बिल गेट्स ओबामा और जॉन कैरी तक को जो है सीख दी होए कि आपने इमर्जिंग मार्केट्स में कैसे काम करना है वो कैसे. तो वो कहते हैं जी हम जब इनके पास गए तो इनको अगर आप वो कहते हैं जी अगर आप गूगल करें तो इसके बारे में बड़ी आपको फैंसी और सेंसेशनलाइज किस्म की हेडिंग्स मिलेंगी. तो कहते हैं मुझे उन हेडिंग्स ने बड़ा इंट्रीक किया तो मैंने कहा इस आदमी को तो लेना चाहिए. वो कहता है जी जब आप गूगल खोलते हैं ना और आप आरिफ नकवी लिखते हैं तो उसमें आता है फाइनेंशियल फेरी टेल हाउ वन मैन फूल्ड ग्लोबल एलीट द गार्डियन के अंदर ये थी ही कन्विंस अलीट ही इन्वेस्टेड फॉर गुड देन द मनी वैनिश्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया हाउ अ पाकिस्तानी कॉन मैन रॉब्ड 100 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम बिल गेट्स ये न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर आया. तो वो कहते हैं जी कि ये सारी जब मैंने हेडलाइंस पढ़ी तो मैंने कहा आई विल गो और मैं इजाजत दूंगा और मैं इसको मीटिंग करूंगा और मैं इससे मिलूंगा. अच्छा कहता है उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के दो रिपोर्टर्स थे साइमन क्लार्क एंड विल लाउच इन्होंने ना अपनी बुक लिखी थी द की मैन. उसके अंदर वो कहते हैं जी उसने बहुत सारे उन्होंने रेवलेशंस किए क्योंकि वो कहता है जी हो सकता है कि उनकी भी शायद इसके साथ मुलाकातें हुई और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके सामने लाए. उसमें मेन चीज जो बताने की थी अभी हम और डिटेल्स आपको देंगे कि ये था कि जो लोग शायद शामिल थे उन्होंने शायद कोई फाइनेंशियल हैंकी पैंकी की होगी क्योंकि वो सारे जो थे उनको भी 125 इयर्स की जो है सजा दी थी यूएस कोर्ट में. तो उन्होंने यूएस को ऑफिशियल्स को कहा कि हम जो हैं आपके साथ कोऑपरेट करेंगे हमको इतनी ना दी जाए. ये जो जर्नलिस्ट है टेलीग्राफ न्यूजीलैंड का ये कहता है कि इस तरह के और भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स यूरोप के अंदर होते हैं मगर 125 इयर्स की किसी को जेल में सजा नहीं दी जाती है. तो इसके साथ ऐसे क्यों किया गया एंड देन व्हेन ही रेड ऑल दीज यू नो फ्लैशी हेडलाइंस ही थॉट दैट ही शुड मीट एंड फाइंड आउट द स्टोरी सो ही फाउंड आउट द स्टोरी. अच्छा अब क्या है वो कहता है जी अब राज कैपिटल के बारे में कहा जाता है कि ये पूरे सिस्टम को जो है ये जी ये आरिफ नकवी चलाता था और बड़ा ही इसका जो है ये ड्रैकोनियन स्टाइल था शायद. और वो कहता है जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है. जब मैंने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि इंतहाई अच्छा आदमी है और अपने जो नीचे के लोग थे उनसे बहुत प्यार से करता था. वो कहता है जी आप यानी खुद सोचें कि जो लोएस्ट एम्प्लॉय जो चीपेस्ट एम्प्लॉय था अबराज ग्रुप का वो 120,000 यूएस डॉलर पर ईयर कमाता था जो सबसे लो ग्रेड का था ऑफिशियल जो था. इसके अबराज ग्रुप में 400 एम्प्लॉयज थे. तो वो कहता है जी मैंने फिर ट्रेस करना शुरू किया जरा बंदे टू बंदा मुस्तफा अब्दुल वदूद ये अबराज कैपिटल के एक्स मैनेजिंग पार्टनर थे और बड़ा फ्लैशी इनका दुबई के अंदर लाइफस्टाइल था घर बड़े ह्यूज एंड ह्यूज पार्टीज जिसके के अंदर सेलिब्रिटीज और ये सारे ये बड़े बड़े जो है अलीट दुनिया की आती थी एंड देन यॉट और यॉट्स के ऊपर इसने पार्टीज करनी तो वहां पे दुनिया की बहुत बड़ी अलीट आती थी. तो वो अच्छा जी ये कहते हैं जी कि इसको सबसे पहले सिक्योरिटीज फ्रॉड चार्जेस के ऊपर पकड़ा. इसको जब पकड़ा तो जैसे पाकिस्तानियों का होता है ट्रेडिशनल इसने यूएस ने जरा जब सख्ती की तो इसने पिशी कर दी उनके सामने. इसने कहा नहीं नहीं पायन मैनू छोड़ दियो ये बड़ा खराब आदमी है इसने फड़ो मैं तानू. तो जो आपको पता है कि जो कॉरपोरेट सीक्रेट्स भी होते हैं वो भी बहुत सारे इसने उनको ऐसे बताए कि वो सारे जो फैक्ट्स थे वो ट्विस्ट कर दिए गए. तो वो जी वो एक तो ये है वो कहते हैं जी ये इसने सबसे पहले तो ये शुरू हुआ. वो कहते हैं कि ये वो आदमी था जिसको कि मेन मास्टरमाइंड समझा जाता था और आपको पता है अमेरिका में इसको किस जेल में रखा था. इसको वदूद साहब को अमेरिका की उस जेल में रखा था जहां पे वो जो ड्रग डीलर एल चापो था वो भी था. ही वॉज कंसिडर्ड सो डेंजरस ठीक है जी। अच्छा उधर का फिर ये कहता है जी कि ये मैंने सोचा कि कुछ और लोगों को भी पूछना चाहिए, कुछ और लोगों के बारे में भी पता करना चाहिए। एक और आदमी था, वो कहते हैं एक्स अब्राज मैनेजिंग पार्टनर था सेव वेतीपट्टी वेतीवट पिल्लई, ये जो थे इनको भी 119 ईयर्स का जेल दिया गया है। और वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने भी यही कहा कि भाई कोई इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई गलत काम नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, लेकिन इसको भी पकड़ के जो है कहा कि नहीं तुम्हारी कंपनी ग्लोबल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तुम लोग यानी इतना पैसा कैसे बना रहे हो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि ये जो था ये अपनी कंपनीज बेचनी इसने शुरू कर दिया था उस स्टेज के ऊपर। ही सोल्ड जो इसके शेयर थे उमानी इंश्योरेंस, कतारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जॉर्डेनियन इंटरनेट कंपनी, यूएई वाटर ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर इसने 81 मिलियन यूएस डॉलर्स आरिफ नकवी ने जनरेट किए थे। उस सिलसिले में इसको वट्टी पेट पिल्लई को पकड़ लिया और कहा जी कि ये पैसा सारा कहां से आ रहा था। तो ऑफ कोर्स ही डिडंट नो कि ये जो आरिफ नकवी है ये पैसा सारा कहां से जनरेट कर रहा है, ही डिडंट नो कि वो अपने शेयर्स जो है बेच रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब उन्होंने इसको क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने कहा जी तुझे भी हम जो है 115 ईयर्स के लिए जेल में डाल रहे हैं, विच मीन्स कि अगर तुम्हारे पास कोई रिप्लाईज ही नहीं है बिकॉज यू आर द मैनेजिंग पार्टनर, सो इफ यू डोंट नो देन हु नोस। तो ये ऐसे हुआ। उसके बाद जी वो कहते हैं जी कि हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की ये जो है फादी गंडूर लॉजिस्टिक्स जो हैं, इसका वो जो कंपनी थी एरामैक्स जो थी उसके अंदर अब्राज कैपिटल का 232 मिलियन जो यूएस डॉलर है वो हुआ था इन्वेस्ट, और इसने उसको कई मिलियन डॉलर और बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑल दैट। और उसमें भी जब इसने शेयर बेचे जो कि अब फिर टच कर रहे थे बहुत ज्यादा, कोई 200 मिलियन से ऊपर निकल गए थे, उसने फिर इसकी जो है वो, क्योंकि वो देख रहे थे कि मिडल ईस्ट के अंदर ये कैसे इतना ग्रो कर रहा है, ये कर क्या रहा है कि इसका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है। वो कहते हैं जी कि इसने 5 times ये जो इसने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 15 मिलियन इन्वेस्ट किया था इसके अंदर एरामैक्स में, 5 times वो इसकी वो जो है वो वेल्थ बढ़ गई। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इतना जबरदस्त वो कंपनी काम कर रही थी एरामैक्स की कि एरामैक्स के एम्प्लॉयज जो है उनके अंदर 14 मिलियन यूएस डॉलर बांटे गए। हमें कितना चाहिए? 1 मिलियन डॉलर कनेडियन। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी इन्होंने इन्वेस्टर्स को 600 मिलियन के दिए वो डिविडेंड्स दिए। फिर क्या हुआ, ये जरा थोड़ा सा एम्बिशियस हो गया जो है आरिफ नकवी, इसने कहा कि अब मुझे कुछ यूरोप की कंपनियों में करना चाहिए। तो ये जो कंपनी थी ईएफजी हर्मीज, आपको पता है बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है, उसके अंदर जो है इसने 505 मिलियन डॉलर से खरीदे शेयर्स, उसमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए और फिर 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के सेल कर दिए। तो इसी तरह उसने जो है टर्किश एक कंपनी थी वहां पे कुछ थे सिंगापुर में मलेशिया में, कई कई मिलियन 100 मिलियन का लिया, 300 मिलियन का बेच दिया, 4 का लिया, 700-800 मिलियन का बेच दिया, ये सारी चीजें चलती रही। अच्छा इसमें क्या हुआ फिर कि ये अब लोगों की नजरों में आना शुरू हो गया। नजरों में इसलिए आया कि यूरोप की बहुत सारी जो कंपनी और लोग थे ना वो आरिफ नकवी के अंदर इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए, क्योंकि वैसे भी मिल तो रहा था ये जॉन कैरी और ओबामा टाइप के लोगों के साथ। उन्होंने कहा इस आदमी के पास क्या मैजिक है, वी नीड टू नो कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कौन सा इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर विजिट पैदा हो गया है। यहां पर एक खालिद हवालदार का ये जिक्र करते हैं, ही इज द एमडी एंड फाउंडर ऑफ रिस्क एंड रेगुलेटरी एडवाइजरी फर्म एक्रेडिटस। उसने कहा जी कि ये जिस वक्त इसने ये सारा काम शुरू किया तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारी यूएस की जो कंपनीज थी उन्होंने कहा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए अलेजली कि हम तुम्हारे ये बाय आउट करेंगे। जब डील्स फाइनलाइज होनी शुरू हुई इन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी, क्योंकि ये सारी स्टॉक एक्सचेंज पे थी कंपनियां, वो जो मेजर बायर्स यूएस के थे वो सारे पीछे हट गए। एज अ रिजल्ट इसको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया और मार्केट के अंदर बात फैल गई कि मे बी ये जो इतनी बड़ी यूएस की कंपनीज हैं ये जो पीछे हटी हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर हैंकी पैंकी है। वरना इसका कहना है कि क्या वजह है, यानी कि जो राइटर है ये टेलीग्राफ न्यूजीलैंड का, वो कहता है वरना क्या वजह है कि इवन ओबामा की जो एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी है पेनी फ्रिट्सकर वो तक उन यूएस बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल थी जो कि इसकी कंपनी को, ये देखें ये ओबामा साहब की बड़ी ये फेवरेट समझी जाती थी पेनी फ्रिट्सकर, और ये भी अपॉर्चुनिटीज देख रही थी और ये भी अब्राज ग्रुप के अंदर कुछ शेयर्स उसके खरीदना चाहती थी। तो वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की एक कंपनी में इतने बड़े लोगों का इंटरेस्ट क्यों था, इसलिए था क्योंकि बेइंतहा प्रॉफिटेबल कंपनी और बिजनेस वो चला रहा था। तो वो कहते हैं जी कि ये जो बुक है द की मैन जो ये उन्होंने लिखी है उसके वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोगों ने, उन्होंने कहा जी कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये इसलिए थी वहां पे और इसलिए ये सब लोग जो है करना चाहते थे और अपने बिजनेसेस को अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिका में बढ़ाना चाहते थे.
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
परिवार ही सब कुछ है, दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है. अब जब आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के, ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा. उनकी मदद करने का यही सही तरीका है. CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं. शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं. CIBC.com/cashpickup पर जाएं.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 4168945872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा.
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ, 4168945872.
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो.
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में नए तालीमी साल के लिए फुल टाइम हिव्स और संडे स्कूल के लिए एडमिशन का आगाज हो चुका है. इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज रीजन के टॉप रेटेड एलिमेंट्री स्कूलों में से एक है, जहां ऑन्टेरियो सिलेबस के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज, अरबी और कुरान शामिल हैं. इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में ब्लेंडेड करिकुलम, क्वालिफाइड स्टाफ, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, जिमनेजियम, लाइब्रेरी, साइंस लैब जैसी खसूसियात मौजूद हैं. एडमिशन के लिए अभी कॉल कीजिए 519-740-6855.
जी
तो बस मजीद भाई, ये तो थी अब्राज कैपिटल की स्टोरी और मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत एक साहब जो है मेरे जानने वालों में से, उनको मैं लाना चाहती हूँ. अगर वो आ जाएं और मान जाएं तो BCCI की जो असल स्टोरी है ना मजीद भाई, वो भी हम सामने लाना चाहेंगे लोगों के. तो कभी अल्लाह करे, मैं बड़ी दुआ करती हूँ वो मान जाएं और उनको हम सामने लेकर आएं और वो बात बताएं और बताएं कि कैसे, किस तरह से सारी चीज को मैनिपुलेट किया गया और कैसे इल्जाम लगाए गए उनके ऊपर, विच वॉज नॉट ट्रू एट ऑल बिकॉज ही वॉज सिटिंग राइट इन द हार्ट ऑफ BCCI उस वक्त जो थे. बहरहाल कुछ बातें जो है वो हम छोड़ देते हैं उनके लिए. अच्छा जी, हमारे जो जस्टिन वीवर साहब हैं, आज उन्होंने एक अपडेट दी है कि उनकी वो जो बीमारी है जिसके कि उनको फेस का पैरालिसिस हो जाता है, उसके ऊपर क्या जो है वो है चल रहा है, उनका अपडेट्स क्या है. वो कहते हैं कि ये इन्होंने बताया है कि जी मैं बड़ा कैथलिक हूं और मैं अल्लाह पे बड़ा बिलीव करता हूं. तो वो कहते हैं जी मेरे साथ जो भी कंडीशन है मैं अब बेटर फील कर रहा हूं, लेकिन जो भी मुझे डिस्कम्फर्ट है वो अल्लाह जानता है उसके बारे में, ही नोज. एंड इस तरह तो लोगों को बड़ी हैरत होती है कि एक सिंगर जो है वो इस तरह उसका बड़ा, क्योंकि ज्यादातर तो ये लोग रिलीजन वगैरह पे बिलीव ही नहीं करते. तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं आई नो ही नोज बेस्ट और इस तरह करके. तो बहरहाल वो उसके जो आज फैंस हैं वो जरा खुश हुए हैं कि एटलीस्ट उसने कुछ अपडेट दिया कि ही इज ओके. वो कहता है जी आई एम गेटिंग बेटर. आज जनाब थी सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत और आज सारी इंडस्ट्री ने उसको याद किया और कहा कि बहुत ही अच्छा बंदा था. और आपको पता ही है कि ये वन ऑफ दोज था जिसने के अपना, जिसका के कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड के अंदर, एंड ही रियली मेड इट बिग इन द इंडस्ट्री. ही स्टार्टेड प्लेइंग स्मॉल रोल्स इन टीवी और फिर वहां से ये फिल्म में आया था. ही वाज फाउंड डेड एट द एज ऑफ 34 इन हिज अपार्टमेंट ऑन June 14, 2020. और जो है ये बड़ा ही, इसको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फिर आई थी, आपको हमने बताया ही था यहाँ पे कि ड्रग ओवरडोज है या उसकी गर्लफ्रेंड अलेजली शामिल है या क्या. तो पटना में ये रहते थे, फिर ये स्टडीज के लिए दिल्ली आ गया था एंड देन यू नो फ्रॉम देयर. तो एक दफा इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, जो अब आज सामने लाया गया है एक इंटरव्यू में, तो कि उन्होंने कहा जी कि हमने तो सुना है बॉलीवुड के अंदर बड़े कैंप्स हैं, तो आप किसके साथ, आपकी लॉबिंग किसके साथ है? या कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं कि किसी ने मुझे बताया ही नहीं है कि यहां पे कैंप्स हैं बॉलीवुड में. वरना लोगों ने आज इनको बड़ा याद किया. किरण खेर साहिबा जो है जी वो आज 70 ईयर्स की हो गई है. तो अपनी 70th बर्थडे उन्होंने अपने बेटे के साथ मनाई और उसकी कुछ तस्वीरें इन्होंने डाली हुई थी. इनके बेटे भी आपको पता ही है सिकंदर खेर एक्टर हैं. तो मुंबई में ये अपनी माँ को जो है वो लेकर गए एक लंच के लिए, तो वहां पे इनको आप देख रहे हैं कि इन्होंने ग्लासेस से पहने हुए हैं बड़े सारे, और इनके साथ जो बेटे हैं उन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई है और उसने अपनी माँ के गिर्द जो है वो अपने आर्म्स किए हुए हैं. तो किरण खेर ने आज इसको अनाउंस किया और कहा कि ब्लेसिंग्स, लव एंड वार्म्थ, फोल्डेड हैंड्स और फिर बहुत सारे हार्ट इमोजीज जो हैं वो अपने जो है जहां पे ये शेयर कर रही थी सारी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे, वहां पे इन्होंने छोड़े। अक्षय कुमार साहब की फिल्म जी सम्राट पृथ्वीराज बुरी तरह से फेल हो गई है। आपको पता ही है कि इस मूवी के अंदर 200 करोड़ लगाए गए थे और इसने सिर्फ जो है एक हफ्ते में 65 करोड़ जो है वो कमाए हैं। और ये इसके अंदर दिखाई गई थी पृथ्वीराज की फाइट्स जो है मोहम्मद गोरी के साथ। तो यहां पे आज जो इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने कहा जी कि मुझे पहले ही इसने कहा था अक्षय कुमार ने कि अगर इस तरह की जो पीरियड मूवीज हैं ये, क्योंकि ये 12th सेंचुरी पे बनी हुई है तो ये नहीं चलेंगी, तो मैं फिर से कमर्शियल मूवीज राउडी राठौर और हाउसफुल की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं। तो वैसे मैं तो अब नहीं देखती हूं बहुत ज्यादा इंडियन फिल्में, लेकिन मैंने ये देखी थी सम्राट पृथ्वीराज। जैसे कि पीछे भी इन्होंने मुस्लिम राजों के ऊपर मूवीज बनाई थी तो भाई वो तो किसी फ्लूक से चल गई, शायद उसमें एक्टर्स जो थे वो आपके बड़े फेवरेट थे। ये इतनी कोई बकवास फिल्म बनाई हुई है और हमेशा जो मुस्लिम राजा है उसको बताया हुआ है वो बड़ा जंगली है, वो बड़ा पागल है, वो बड़ा स्टूपिड है और बिल्कुल मंगोल्स की तरह पागल हुआ हुआ है वो ऐसे, और वो जो है उसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो भाई साहब इस तरह की फिल्में कब तक बनाओगे और कब तक झूठ बोलोगे मुस्लिम राजों के बारे में, ऐसे नहीं थे मुस्लिम राजे, यू नो। तो जी इसमें भी मोहम्मद गोरी को बड़ा ही जो है वो, एक तो इसकी शक्ल जिस आदमी को लिया हुआ है बड़ा ही वो स्टूपिड सा लगता है शक्ल से ही, और ऊपर से जी उसको अपनी तो बुद्धि कुछ है नहीं, समझ तो उसको है नहीं, जो उसको एडवाइजर कह रहे हैं उसके ऊपर वो चल रहा है मोहम्मद गोरी, आप सोचें जरा है जी, उसको उसको ऐसे दिखाया हुआ है। और भाई साहब थोड़ी सी रिसर्च किया करो और ये जो कुत्ते बिल्लियों की शक्ल के मुसलमान राजे दिखाते हो ना वो ना दिखाया करो, देवर ऑल फॉर योर सेक देवर ऑल सेल्जुक टर्क्स। तो ये सेल्जुक टर्क्स जो है ना, जरा टर्क्स की शक्लें देख लें आप कितने वो हसीन हैं तुर्की वाले जो हैं, तो ये बड़े खूबसूरत थे ये सारे, तो सही बनाया। तो ये जी चली नहीं है बिल्कुल बॉक्स ऑफिस में, बुरी तरह से ये फ्लॉप कर गई है। एंड जनाब सरीना विलियम्स जो है वो अब वापस आ रही है एक साल के बाद विमिल्डन में, और उनको जो है इन अ वाइल्ड कार्ड वापस लेकर आया जा रहा है। और ये जो है शी सेड दैट शी विल बी रिटर्निंग टू ग्लैम स्लैम एक्शन and she will be part of the Wimbledon which begins on June 27th. तो उसमें फिर आप जो है इनका एक्शन कभी हम करेंगे, वैसे सरीना विलियम्स और इसकी बहन जो है उसके ऊपर भी कभी स्टोरी करेंगे, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनके बाप की स्ट्रगल्स एंड हाउ दे केम इन सच अ ह्यूज गेम एंड ऑल दैट। एंड जनाब एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है और इसके मुताबिक यूएस टेनिस एसोसिएशन के जो सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ल्यू शेर, उन्होंने कहा जी कि हम एक गवर्नमेंट की जो सजा है वो उसके एथलीट्स को नहीं दे सकते, एंड एज अ रिजल्ट यूएस टेनिस ओपन जो हो रहा है उसके अंदर रशियन और बेलारूसियन जो एथलीट्स हैं वो अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये एथलीट्स जो हैं ये कोई भी अपने मुल्क का झंडा नहीं उठाएंगे, अंडर न्यूट्रल फ्लैग जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हम एथलीट्स को इनके मुल्क की जो है वो सजा नहीं दे सकते हैं। इससे पहले आपको पता है बहुत सारे जो इवेंट्स हुए थे उसमें से निकाल दिया गया था इनको, और बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उन्होंने बहुत इसका बुरा मनाया था।
विंबल्डन इज द बिगेस्ट वन।
हाँ जी हाँ जी। तो एंड जनाब कल हम आपको बता रहे थे कि वर्ल्ड कप में कौन जाएगा कतर में है जी, कल जो था बड़ा वो मैच था, अगर आपने देखा हो मैच बड़ा थ्रिलिंग मैच था वैसे, ऑस्ट्रेलिया और पेरू का, तो उसके अंदर जी ऑस्ट्रेलिया जीत गया फिर से। तो अब ये जा रहे हैं कतर, इन्होंने पेरू को 5-4 से जो है इन शूट आउट्स वो किया, और इनका जो ऑस्ट्रेलियन सब्स्टिट्यूट गोलकीपर था एंड्रयू रेडमेयर उसने बड़ी जबरदस्त काम किया, उसने जो लास्ट पेनल्टी थी उसको रोका, उसकी वजह से, वरना ये बिल्कुल 0-0 पे चल रहे थे और ये जो पेनल्टी शूट आउट्स एक्स्ट्रा टाइम में इनको दी गई तो उस पे फिर जो है ये जीते हैं। एंड एब्सोल्युटली जनाब आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट मुकेश अंबानी, आपको पता ही है एशिया के रिचेस्ट मैन है ये, इसने क्रिएट किया था वाईकॉम 18 जॉइंट वेंचर विद यूएस पैरामाउंट ग्लोबल और ऑस्ट्रेलिया मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक सन जेम्स के साथ, और अब इन्होंने आईपीएल के जो राइट्स हैं 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो है इन्होंने बैक किए हैं। इसके अलावा स्टार इंडिया जो के विच इज ओन्ड बाय यूस बेहमोथ डिज्नी, उनको भी जो है ये नेक्स्ट 5 आईपीएल सीजन के लिए मिली है इसकी राइट्स, इन्होंने रिटेन किए हैं, और ये दोनों डील्स जो हैं दे आर वर्थ 5.65 बिलियन यूएस डॉलर्स बिकॉज आईपीएल इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेरी वेल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट देयर। तो ये जनाब मुकेश अंबानी साहब और पहले आ रहे हैं।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288, इसके अलावा कैलगरी वैंकूवर एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.